विनय जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि क्रिकेट का जुनून कैसे शुरू हुआ? हिमाचल को रिप्रेजेंट करते हैं
जी मैम,
तो फिर दिल्ली से आप होके फिर हिमाचल के लिए खेलते थे, उसके बाद हिमाचल का रुख वापस से कैसे हुआ?
वही कहते हैं कि पता नहीं था बस कि हिमाचल में कैसे खेलते हैं, क्या है क्रिकेट का वो है। वहाँ पे खेलते खेलते दिल्ली में एक भैया मेरे को मिले, उन्होंने बोला यार तू कहाँ से बिलोंग करता है, अच्छा खेलता है, कहाँ से खेलता है? तो मैंने कहा मैं हिमाचल से हूँ। कहते यार हिमाचल से होके तू दिल्ली में, तो हिमाचल से क्यों नहीं खेलने जाता? मैंने कहा पता ही नहीं, जब मैं 13 साल का होऊंगा मैं
जी।
तो उन्होंने बोला कि हिमाचल जा, ट्रायल्स हो रहे हैं वहाँ पे।
तो हिमाचल से बहुत लोग दिल्ली की तरफ मूव करते हैं कि वहाँ बेटर एकेडमीज है, बेटर सब कुछ है, तो ऐसे में मतलब हिमाचल को आप कहाँ देखते हैं?
मैम अब तो बहुत ऊपर ले गए हैं अनुराग ठाकुर जी ने, हिमाचल में धर्मशाला जैसे खूबसूरत स्टेडियम बनाए हैं, उसके साथ साथ 5 से 6 स्टेडियम एट अ टाइम आज हिमाचल में कर रहे हैं, जो कि डोमेस्टिक लेवल पे मैचेस होते हैं वहाँ पे। और मैम वही कहते हैं कि अनुराग ठाकुर जी की देन है, जो एक विजनरी पर्सन थे, तो उन्होंने पहले हिमाचल में एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, स्टेडियम्स, फैसिलिटीज, जिम्स, डाइटिशियन, जो चीजें
ओवरऑल मतलब जो नीड है
वो पूरी करी। साथ ही साथ मैम उनका एक विजन था कि अब उनको यूटिलाइज करके आम लोगों को, हिमाचल के लोगों को वो सुविधाएं मिल सके, उन बच्चों के लिए सुविधा। तो उन्होंने 72 एकेडमीज खोली है मैम हिमाचल में, 72 एकेडमीज खोली है। और वो 72 एकेडमीज का पर्पस क्या था कि हिमाचल का कोई गांव का बच्चा उसके 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के नियरेस्ट वो एकेडमीज हो। एक वो था, सपना भी था कि मैं उनके साथ बॉलिंग करूंगा, खेलूंगा, तो वो हमने एक साथ बहुत मैचेस करे,
एक मैच में मतलब कई सारे मैचेस आपने साथ में करे,
क्योंकि वो हिमाचल के कप्तान भी रहे हैं और हिमाचल को मैं भी रिप्रेजेंट करता हूं, तो उनके अंडर ही हमें खेलना पड़ा।
तो विनय जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि क्रिकेट का जुनून कैसे शुरू हुआ?
मैम हम गांव में रहते थे तो वहां पे थोड़ा सा खेलते रहते थे, पर एक्चुअल में जो जुनून बोल सकते तो मेरे फादर दिल्ली में लेके आए हमें, वहां पे वो जॉब करते हैं, तो वहाँ पे जब हम गलियों में और एकेडमीज होती थी यहाँ पे, तो देखा थोड़ा सा, तो उनके बच्चों के साथ में फ्रेंड सर्कल्स के साथ में जाके प्रैक्टिस करते थे, उनके साथ जाते थे, खेलते थे, तो वहाँ से धीरे धीरे जुनून सा बनने लगा। और उसी दौरान जैसे अब थोड़ा सा मेरे जो फ्रेंड्स थे वो ज़्यादा क्रिकेट के लिए वो थे, तो हम सुबह 4 बजे उठते थे और दूसरी मंजिल से मैट होती थी वो बिछाने वाली, उसको फेंकते थे, उठा के ग्राउंड में लेके जाते थे हम 6 के 6 फ्रेंड्स, और वहां पे लगाते थे, जब तक उजाला नहीं आए तब तक हम वार्म अप करते थे, फिटनेस करते थे, और जैसे ही आ जाए तो फिर हम प्रैक्टिस शुरू करते थे। तो वहां से कह सकते हैं जुनून शुरू हुआ, क्योंकि दिल्ली में वो कल्चर है जो मुझे लगा।
तो दिल्ली आप किस एज में आए थे?
मैम छोटे आ गए थे, क्योंकि फादर की जो दिल्ली में थी, क्योंकि हिमाचल से, तो वो यहाँ पे दिल्ली में जॉब करते थे, तो पहले हम हिमाचल में पढ़ते थे, फिर यहाँ से दिल्ली आए मेरे फादर, तो अपने साथ लेके आ गए।
आप हिमाचल को रिप्रेजेंट करते हैं
जी मैम,
तो फिर दिल्ली से आप होके फिर हिमाचल के लिए खेलते थे?
मैम उस टाइम कुछ नहीं खेलते थे, उस टाइम तो छोटे थे बहुत, 12-13 साल के होंगे तब जब दिल्ली आए थे, तब कोई ऐसा कुछ नहीं था कि हिमाचल से खेलना है या कुछ भी, मतलब पता ही नहीं था कुछ भी कि क्रिकेट में कैसे खेलते हैं, हिमाचल से खेलते हैं, कहाँ से खेलते हैं, बस ऐसा लगता था कि यहाँ खेल रहे हैं। तो
खेलना आपने स्टार्ट कर दिया और दिल्ली के स्टेडियम वगैरह से आपने खेलना स्टार्ट किया?
नहीं मैम, वैसे लोकल्स खेलते थे और एकेडमीज में जाते थे, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में जो बच्चे थे तो एकेडमीज जाते थे नियरेस्ट वाइज ना, तो वहां जाते थे और बस धीरे धीरे वहीं से खेलना शुरू कर दिया उन्हीं चीजों में थोड़ा सा टाइम।
तो उसके बाद हिमाचल का रुख वापस से कैसे हुआ?
वही कहते हैं कि पता नहीं था बस कि हिमाचल में कैसे खेलते हैं, क्या है क्रिकेट का वो है। वहां पे खेलते खेलते दिल्ली में एक भैया मेरे को मिले, उन्होंने बोला यार तू कहाँ से बिलोंग करता है, अच्छा खेलता है, कहाँ से खेलता? तो मैंने कहा मैं हिमाचल से हूँ। कहते यार हिमाचल से होके तू दिल्ली में, तो हिमाचल से क्यों नहीं खेलने जाता? मैंने कहा पता ही नहीं, जब मैं 13 साल का होऊंगा मैं
जी।
तो उन्होंने बोला कि हिमाचल जा, ट्रायल्स हो रहे हैं वहां पे। तो फिर मैं गया वहां पे ट्रायल्स के लिए
जी।
फिर मुझे पता लगा कि हिमाचल में ऐसा ऐसा चीज होती है और ऐसे होता है, तो फिर मैं हिमाचल चला गया।
ओके, तो आप हिमाचल जैसी खूबसूरत जगह से है जहाँ के लोग काफी साधारण और बिहेवियर वाइज काफी सादगी और काफी खूबसूरत होते हैं, तो वहाँ से मतलब आप दिल्ली आए, तो वहाँ के लोगों के लिए क्या चैलेंजेस रहता है आज के टाइम में मतलब खेलने के लिए?
उस टाइम जब वो चैलेंज थे, जब हमने क्रिकेट खेलना शुरू करा, तो शायद हम एक लकी पर्सन थे कि उस टाइम अनुराग ठाकुर जी हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने, वो खुद एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं, तो स्पोर्ट्समैन के साथ में एक विजनरी पर्सन है मैम, वो उन्होंने हिमाचल क्रिकेट में आते ही एक रेजिडेंशियल एकेडमी खोली जो हिमाचल के नेशनल लेवल पे बच्चे जूनियर स्तर पे अच्छा कर रहे थे, तो धर्मशाला स्टेडियम में एक एकेडमी खोली 15 से 20
जब बच्चे, आप खेलते थे,
जब हमने मैंने खेलना ही शुरू किया था।
अच्छा।
मतलब मैंने नेशनल एक साल रिप्रेजेंट करा तो अगले साल उन्होंने वो वहाँ पे एकेडमीज, क्योंकि प्रेसिडेंट बने थे तो उन्हें एकेडमीज वहाँ पे सेटअप कर दी रेजिडेंशियल। उसमें इतनी फैसिलिटीज थी, जैसे नेशनल लेवल के प्लेयर्स को बीसीसीआई के लेवल 3 कोच थे वहाँ पे अनुजपाल दास जी, साथ साथ में वहाँ पे ट्रेनर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, जिम्स, डाइटिशियंस और सारी फैसिलिटीज ऑन हाउस थी क्रिकेटिंग के लिए। तो वहाँ से हमारा करियर थोड़ा थोड़ा मतलब प्रोग्रेस पे गया
जी। तो हिमाचल से बहुत लोग दिल्ली की तरफ मूव करते हैं कि वहाँ बेटर एकेडमीज है, बेटर सब कुछ है, तो ऐसे में मतलब हिमाचल को आप कहाँ देखते हैं?
मैम अब तो बहुत ऊपर ले गए हैं अनुराग ठाकुर जी ने, हिमाचल में धर्मशाला जैसे खूबसूरत स्टेडियम बनाए हैं, उसके साथ साथ 5 से 6 स्टेडियम एट अ टाइम आज हिमाचल में कर रहे हैं जो कि डोमेस्टिक लेवल पे मैचेस होते हैं वहाँ पे। और मैम वही कहते हैं कि अनुराग ठाकुर जी की देन है, जो एक विजनरी पर्सन थे तो उन्होंने पहले हिमाचल में एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, स्टेडियम्स, फैसिलिटीज, जिम्स, डाइटिशियन, जो चीजें
ओवरऑल जो नीड है
वो पूरी करी। साथ ही साथ मैम उनका एक विजन था कि अब उनको यूटिलाइज करके आम लोगों को, हिमाचल के लोगों को वो सुविधाएं मिल सके, उन बच्चों के लिए सुविधा, तो उन्होंने 72 एकेडमीज खोली है मैम हिमाचल में। 72 एकेडमीज खोली है। और वो 72 एकेडमीज का पर्पस क्या था कि हिमाचल का कोई गांव का बच्चा उसके 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के नियरेस्ट वो एकेडमीज हो,
कि ज्यादा दूर ना जाना पड़े,
ज्यादा दूर ना उनको जाना पड़े। और मैम आप एक चीज सोचिए कि उनका एक वो एकेडमीज खोलने का एक विजन है, आपने उन्होंने एक एकेडमीज खोल दी वहां पे, एक सब सेंटर में अगर 40 से 50 बच्चा आ रहा है उसमें एक क्वालिफाई कोच रखे जो एचपीसीए के क्वालिफाई कोच है, बीसीसीआई के लेवल 1 कोचेस हैं और जो नेशनल लेवल की ट्रेनिंग है वो वहां पे उन्होंने एक एकेडमीज बेस कर दी मैम। और एक सबसे अच्छी बात है
जी,
जो कि हिमाचल के लोगों के लिए भी बेनिफिट है, देखिए एक बच्चा वहां पे पढ़ने शिक्षा लेने आ रहा, कोचिंग लेने आ रहा है, आज के टाइम में दिल्ली जाएगा बच्चा, चंडीगढ़ जाएगा तो मिनिमम 15 से 20 हजार पे आपके लगते, वही सुविधा उन्होंने ला दी है। अब सेकंड स्टेप आता है कि उनका एक विजनरी वाले इंसान है तो उन्होंने 25 किलोमीटर के बाद आपके लिए एक स्टेडियम बना दिया है, उसमें से आपका नेशनल लेवल का करियर शुरू हो जाता है, मतलब इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस होना शुरू हो जाते हैं वहां से, आप नेशनल के कैंप से। तो वही हम एक लकीस्ट पर्सन है कि ऐसा इंसान हमें हिमाचल में मिले हैं।
आजकल कहते हैं ना कि हर गली गली में सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली है, हर बच्चा आजकल क्रिकेट खेलना चाहता है, लेकिन एक गली के क्रिकेट से लेके प्रोफेशनल जो क्रिकेट खेला जाता है उसका क्या प्रोसेस है?
गली और उसमें प्रोफेशनल क्रिकेट में अंतर तो धीरे धीरे बढ़ता है
जी।
और स्टार्टिंग में जब बच्चा खेलता है तो उसको ये पता नहीं होता कि वो गली में खेल रहा है या मुझे इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना है, कुछ भी ना, वो एक चलता है पैशनेट से। पर आज के टाइम में क्रिकेट का जुनून हर तरीके से होता है, जब से आईपीएल आया है बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी लीग्स आई हुई हैं, तो और दूसरे का लोगों का प्रश्न, लोगों का ये बन चुका है कि हमें क्रिकेट यहीं से उठाएंगे और इंडिया खेल जाएंगे, ये खेल सकते हैं। पर आज वो वैसा नहीं है, बीसीसीआई ने एक सिस्टम बनाया है, वो सिस्टम ये है कि आपको अपनी स्टेट एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करना होगा, जो उनका रूल होता है, जैसे हिमाचल से बात कर लेते हैं, हिमाचल में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल से पहले टूर्नामेंट होता है, उसमें पहले ट्रायल्स होते हैं उसके, हर डिस्ट्रिक्ट के एक टीम के, उस ट्रायल्स के बाद 12 जिले हैं, 12 जिला की आपस में टीम्स आपस में मैच खेलेंगी, उसमें से जो बच्चे वहां से परफॉर्म करेंगे 20 से या 30 40 बच्चे जो भी होंगे वो नेशनल कैंप्स के लाएंगे, फिर उनकी नेशनल लेवल की ट्रेनिंग्स होंगी, नेशनल लेवल की ट्रेनिंग्स होने के बाद 15 बच्चे सिलेक्ट होंगे जो रिप्रेजेंट करने जाएंगे हिमाचल को अपने उसमें, उसके बाद रिप्रेजेंट करने के बाद आपके सारी स्टेट्स के साथ मैचेस होते हैं, सारी स्टेट्स के बाद मैचेस में जो अच्छा करेगा, तो नॉर्थ जोन मैचेस होते हैं, जोन वाइज डिवाइड कर दिया बीसीसीआई ने, उसके बाद फिर इंडिया ए, इंडिया टूर, वो फिर वहीं से सारा प्रोसीजर शुरू हो जाता है।
तो एक एक स्टेप करके आपको आगे बढ़ना है सेलेक्ट होते हुए?
बिल्कुल,
डायरेक्ट कुछ भी एंट्री नहीं है?
नहीं मैम, डायरेक्ट एक ही एंट्री है, आजकल आईपीएल शुरू हो गया तो बहुत सारी लीग शुरू हो गई हैं, तो कि देखते हैं कि कहीं बच्चा टैलेंटेड दिख रहा है उनको, तो वो वहां से उठा के उसको कैंप्स में ले जाते हैं, तो कैंप्स में ले जाते हैं, आईपीएल के कैंप्स में ले जाते हैं, वहां पे उनको अच्छा लगता है, कोचेस को अच्छा लगता है या टीम के बेनिफिट, तो वहां से एक डायरेक्ट एंट्री मिलती है, पर वो भी एक प्रोसीजर से कि कहीं वो नजर पड़ रही है उन बच्चों के लिए, तब वो
एंट्री, खास बात उसमें दिखती है तो डायरेक्ट उसे कहते हैं एडमिशन मिल जाती है उसमें।
मतलब उसको ट्रायल्स के लिए बुलाते हैं, आईपीएल के ट्रायल्स पे बुलाते हैं, वहां पे वेटर दिखते हैं जैसे फ्रेंचाइजीज को, कोचेस को, कि भाई ये हमें लग
अच्छा
रहा है
रिप्रेजेंट करेगा, देन उसे एंट्री मिल जाती है।
बिल्कुल मैम।
ओके।
और डोमेस्टिक में कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं है, उसके लिए एक प्रोसेस बनाई हुई है बीसीसीआई के द्वारा,
डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला जो आप बता
रहे हैं, जैसे दिल्ली है तो यहाँ पे डीडीसी लीग होती है, उसके बाद लीग में जो अच्छा करते हैं उसके बाद नेशनल कैंप्स के लिए होते हैं, प्रोसेस बना हुआ है प्रॉपर।
और रणजी क्रिकेट का क्या प्रोसेस है?
मैम रणजी का भी सेम ही है, रणजी में एज सच कुछ नहीं है, आप जैसे 19 लेवल पे परफॉर्म कर रहे हो, 23 भी लेवल कर रहे हो, आप उस लेवल पे धीरे धीरे अच्छा करते करते छोटी एज से तो उस पर पहुंच रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं जो लीग्स में, जैसे मैं बताया ना आपको एक टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें अगर आप बैटर कर रहे हो तो आप कैंप्स में आ रहे हो, कैंप्स में बैटर कर रहे हो तो आप रणजी ट्रॉफी रिप्रेजेंट करने जा रहे हो वहां से।
तो हिमाचल ने अभी तक कौन कौन से ट्रॉफीज जीते हैं?
हिमाचल की बात करें तो हिमाचल अभी तक 3 मेजर ट्रॉफीज में एक जीत चुका है, 2 में रनर अप रहा है, कहते हैं एक हम जूनियर में क्या बोलते हैं अंडर 23 जीते थे, रनर अप रहे थे, फर्स्ट टाइम हिमाचल जीता था, और एक हिमाचल रणजी ट्रॉफी विजय हजारे ट्रॉफी जीता है कोरोना काल के बाद में, जो कि सबसे बड़ी अचीवमेंट थी हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन ने, और उसके बैक टू बैक ईयर रनर अप रही है T20 में, रणजी ट्रॉफी के ही
T20 में।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
आपके लिए पिच में उतरने का क्या फीलिंग होता है? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है या नर्वसनेस होता है?
मैम देखिए, मैं जब ग्राउंड में कोई भी स्पोर्ट्समैन जाएगा ना तो उसकी जो 5-6 महीने की प्रिपरेशन होगी ऑफ सीजन में ना, तो वो उसका एक एग्जाम होता है एक तरह का। तो जब वो ग्राउंड में उतरता है उससे पहले थोड़ी सी नर्वसनेस होती है, जैसे ग्राउंड में वो पांव एंटर कर देता है, रख देता है, तो उसके बाद उस क्रिकेटर के थॉट्स ये चले जाते हैं कि जो उसके प्लान्स बनाए हैं उस मैच में किस अकॉर्डिंग खेलना है, क्या प्लान्स हैं, किस तरीके से उसने तैयारी करी है। तो मेरे लिए तो एक्साइटमेंट होती है,
वो जुनून आ जाता है
उसमें। और रही बात प्रेशर की, तो प्रेशर जो मेरे हिसाब से एज अ स्पोर्ट्समैन को या फील्ड में वो प्रेशर है कि आप मैच खेल रहे हैं, 44 आउट है और एक पार्टनरशिप लग रही है 2 बैट्समैनों के बीच में, वो जो उस पार्टनरशिप को ब्रेक करने के लिए जो प्रेशर है, जो वो है, वो इंटेंट आएगा आपकी प्रैक्टिस से, जो आप करते आ रहे हैं पूरे सीजन से पहले की तैयारी में, आपकी प्रैक्टिस में इंटेंट अच्छा होगा आपका, वो होगा तो वो आप उस प्रेशर को भी हैंडल, वो एक स्पोर्ट्समैन का प्रेशर होता। और तो मेरे हिसाब से
तो अभी तक सबसे ज्यादा प्रेशर किस मैच में लगा आपको?
मैम देखिए, एज सच तो देखिए विजय हजारे ट्रॉफी हमने जब रिप्रेजेंट करी थी तो जब हम पहली बार क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचे तो थोड़ा सा एक प्रेशराइज मैच था कि बड़ा इवेंट था और उसमें क्वार्टर फाइनल्स में हम यूपी जैसी बड़ी अच्छी टीम के साथ हमारा मैच था, तो एक वो मोमेंट था जो लाइव मैच था तो थोड़ा सा उसका थोड़ा सा प्रेशर था। और एक मैम प्रेशर की बात तो एक था कि मैं पिछले साल की बात है, मैं इंजरी से कम बैक किया था, मेरी नी इंजरी हुई थी तो मेरे को एट अ टाइम मैच खेलने के लिए कॉल हुई, जैसे मैं फिट हो गया तो मुझे कॉल हुई मैच खेलने के लिए, तो वहां पे ऐसी सिचुएशन की हम फर्स्ट इनिंग में 450 रन बनाए थे दूसरी टीम ने और हमने 500 समथिंग रन बनाए और फर्स्ट इनिंग में मुझे कोई विकेट नहीं मिला था, मैं अपना को कम बैक कर रहा था, तो मेरे चैलेंजिंग ये था कि मेरी एसोसिएशन ने मेरे पे इतना ट्रस्ट दिखा के, मेरी पूरी 2-3 महीने रिकवरी में हर फैमिली की तरह एक सपोर्ट करा और मेरे पे विश्वास करके बुलाया कि मैं, तो मेरे सेकेंड 4th डे था, 3 घंटे का टाइम था कि 3 घंटे का प्लेयर बचा हुआ था और मैम मैंने स्टार्टिंग में टीम को बेवरूद दिखा के और विनिंग नो पे लाया, 5 विकेट टॉप ऑर्डर के बैट्समैन की आउट करके हम वो मैच जीत गए।
तो बेसिकली आप बॉलर हैं?
बॉलर है मैम, बिल्कुल।
ओके, तो विकेट्स लेने में कितना मजा आता है?
मैम विकेट लेने में मजा भी आता है, थोड़ा सा दुख भी होता है कि सामने वाला आउट हुआ वो, क्योंकि जब उनसे सामने से नजर मिलती है तो वो जाते हैं उस साइड से तो थोड़ा सा उनका चेहरा डाउन हुआ होता है, थोड़ा सा वो भी होता है, पर एक एंजॉयमेंट होती है कि आपने प्लान्स किया, उसको समझा और वो चीज हकीकत में उतरी और उससे आपने उसको आउट किया है, तो वो एक खुशी होती है, पर एज अ प्लेयर और एज अ मतलब किसी इंसान को देखते हैं तो थोड़ा सा दुख भी होता है यार वो आउट होके थोड़ा सा ऐसे जा रहा है।
तो कभी माइंड में ऐसा आता है कि उसे एक और खेलने देते हैं, 2 बॉल आउट नहीं करते हैं?
नहीं मैम, वो तो देखिए हर अपना अपना डिपार्टमेंट है और उसमें हर किसी को
तो वो सिंपैथी नहीं दिखा सकते।
नहीं नहीं मैम, वो भी नहीं दिखाएगा, वो बाउंड्री में कन्वर्ट कर देगा।
बस मजाक कर रही थी मैं। एंड अगर जैसे आप बॉलर हैं, हिमाचल की अगर बात करो या उत्तराखंड की बात करो, ये पहाड़ों के जो बच्चे होते हैं काफी सीधे होते हैं जैसे मैंने पहले भी कहा, तो अगर ये बॉलर बनना चाहे तो आप इन्हें कौन से अपने जो ट्रिक्स है वो देना चाहेंगे?
मैम देखिए, बॉलिंग और बॉलर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पहले तो आपकी प्रैक्टिस, आपका प्रैक्टिस में इंटेंट कैसे है, क्योंकि आपको अगर प्रैक्टिस में आपका इंटेंट 100% आप प्रैक्टिस में वो दे रहे हैं, साथ में आपको खुद को जानना है कि मैं किस लिमिटेशन तक जा सकता हूँ, मैं स्विंग बॉलर हूँ, मैं फेस्ट बॉलर हूँ, मैं तेज बॉल डाल सकता हूँ, किस तरीके से वो कर सकता हूँ, सबसे पहले वो समझना है। वो कहाँ बंदा समझेगा, वो अपनी कोचिंग कोच ही आपको बेहतर बता सकता कि आपका दायरा कहाँ तक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी वो है। दूसरी बात, आप जब इस चीज को समझ जाते हैं कि मैं ये ले, तो उसकी प्रैक्टिस ब्रेशन लाना जरूरी है आज के टाइम में। ब्रेशन के साथ साथ में आपको ये जानना है आपकी लाइन लेंथ। आपको हमारे हिमाचल की हिमाचल में और सब लोग बड़े बूढ़े हमारे ये कहते हैं कि आप ना सामने वाले के दिमाग को पढ़ो, तभी आप मतलब उसको रीड कर सकते हो। तो मेरा एज अ बॉलर मानना है, देखिए बैट्समैन के फेस पे तो हेलमेट लगा, आप उसको रीड तो कर नहीं सकते। तो हमें एज अ क्रिकेटर उसको ढूंढना है कि हम किस तरीके से उसको रीड करें। मेरे कोचेज ने बड़ी अच्छी बात बताई, अनुजपाल दास जी ने और ऋषि धवन ने जो मेरे सीनियर प्लेयर्स हैं, तो कि रीड करना है उसको सेंस। तो मैंने मैम हमेशा बैट्समैन के दोनों पांव है ना, उनको हमेशा दोनों आंखें माना उसकी और जो उसका बैट है जो हाथ में पकड़ा वो दिमाग, क्योंकि आप लेंथ पे बॉल डाल रहे हो तो उसके बाद बैट्समैन रिएक्शन कर रहा है, बैट्समैन रिएक्शन कर रहा है वो गलती दिखाने का, तो वो क्या अपने पांव की मूवमेंट्स कर रहा है और हाथ की मूवमेंट्स कर रहा है,
रिएक्शन उसके एक्शन में दिखेंगे।
हाँ बिल्कुल मैम, तो वही चीज आपको और अच्छा बनाती है और आपको बताती है कि इस टाइम इन स्विंग की जरूरत है, आउट स्विंग डालने की जरूरत, कटर्स डालने की जरूरत है, यॉर्कर डालने की जरूरत है। तो मैंने तो हमेशा क्रिकेट में इस चीज को बहुत महत्व दिया है।
तो एक बॉलर के लिए जो टेक्निक्स होती है ये बैट्समैन पे डिपेंड करती है कि बैट्समैन अलग अलग बैट्समैन के हिसाब से होती है।
मैम देखिए हर बंदे का लाइफस्टाइल जैसे अलग है, वैसे ही क्रिकेटिंग में भी उसका लाइफ खड़े होने का तरीका अलग अलग तरीके से, कोई लोअर स्टांस से खेलता है, कोई
अलग अलग तरीके से आउट करना है सबको,
तो उसके लिए प्लान्स होते हैं जो चीजें सिखाई जाती है। मेरा मैं भी उतनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज अ बॉलर, वो बैट्समैन भी उतने ही घंटे टाइम में मिला, अब मुझे एक स्टेप उससे आगे जो निकल जाएगा हम दोनों में से वो बैटल जीत जाएगा। तो वही है कि मैं उसकी वीकनेस पे जल्दी पहचानूं और उसकी जो बेस्ट कर रहा है वो उसमें जिसकी उसकी स्ट्रेंथ है उसको जल्दी पहचानूंगा तो मैं उसको जल्दी से आउट कर सकता हूँ, प्लान्स में कर सकता हूँ। क्योंकि मैम जूनियर लेवल तक क्रिकेट ठीक है कि एक आप बस बॉल डालने आए आउट हो सकते हैं।
अच्छा ऐसा भी है क्या कि बॉल डालने से पहले थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करना होता है उन्हें?
मैम एज स्पेसिफिक तो ऐसा कुछ नहीं है, जब आपको ज्यादा या जैसे बाउंड्रीज कन्वर्ट कर रहा है बैट्समैन बहुत अच्छे फ्लो में कर रहा है तो थोड़ा सा उसको ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा गेम को स्लो डाउन कर देते हैं, थोड़ा सा डायरेक्शन होता है कि टीममेट थोड़ा बात करने आ जाते हो, तो एक प्लान्स होता है कि एक फ्लो में बैट्समैन जब बैटिंग करता है तो उसको थोड़ा सा ब्रेक करने के लिए, और वैसा एज सच कोई डायरेक्शन क्योंकि वो बॉल डालनी पड़ेगी आपको।
लाइक ऐसा होता नहीं कि कई बार ग्राउंड में देखते हैं लोग आपस में टीम बात कर रही है कि कैसे उसका पता नहीं क्या बातें होती है, शायद आप बताएं क्या बातें होती है जब टीम में जब बातें होती है कि डिस्ट्रैक्ट करना है या अचानक से दूसरी तरीके से बॉल डालना है, कुछ ऐसा होता है?
मैम देखिए ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं होता, वहाँ पे जो प्लान्स बनाए जाते हैं मैच से पहले हम उस चीज को फॉलो करते हैं जैसे कोचेस के द्वारा जो हमने उस
क्या प्लान क्या बनाए जाते हैं।
प्लान है जैसे मान लीजिए स्पेसिफिक किसी से मैच है तो अपन आजकल तो वीडियो एनालिस्ट आ चुके हैं टीम में, तो पहले बता देते हैं कि ये इस तरीके से हमने मैच खेलना है, ये इस अपोनेंट से हमारा मैच है तो ये इनकी किसी बैट्समैन की ये स्ट्रेंथ है, दूसरे बॉलर्स की ये स्ट्रेंथ है,
ये स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, ये इस चीज में गुड है,
हाँ बस ये वो किस पार्ट में वो गुड है तो उसके लिए कौन बेहतर है हमारी टीम में जैसे 15 में तो कौन उस सिचुएशन के लिए हैंडल कर सकता है, कौन कहां यूटिलाइजेशन है, इस तरीके से प्लान्स बनाए जाते हैं और उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए फिर ग्राउंड में होता है। ग्राउंड में इतना नहीं होता कि डिटेक्शन वो सारी
किसके ऑपोजिट में कौन उतरेगा ये सारी चीजें डिसाइड होती होगी।
हाँ जी जी जी
तो आपका फेवरेट बॉलर कौन है?
मैम देखिए मैंने बचपन से जब शुरू किया था तो मैंने अपना आइडल ऋषि धवन को ही माना था क्योंकि वो हमारे हिमाचल से बिलोंग करते हैं, इंडिया भी खेले हुए हैं और मैंने उन्हीं को अपना आइडल माना, उन्हीं के साथ इंस्पायर करते हुए खेलना शुरू करा तो वही मेरे लिए।
लेकिन अगर हिमाचल की बात करो या गांव की बात करो, सिटीज में तो फिर भी लोगों का माइंडसेट थोड़ा चेंज है, लेकिन लोगों को लगता है कि अभी तक ये खेल रहा है या खेल कर क्या ही करियर बना लेगा, तो खेल में भी करियर है?
मैम बिल्कुल है, आज के टाइम में मैं खुद को आपका एग्जाम्पल, क्योंकि हाँ ये आपने बड़ा अच्छी बात बोली कि गांव में अभी मेंटेलिटी ये थी थोड़े साल पहले कि यार बच्चा खेलेगा तो यार नौकरी कब करेगा, ये सारी चीजें करेगा, पढ़ाई सब कुछ,
बहुत कम लोगों का सिलेक्शन हो पाता है।
बिल्कुल मैम, पर मैम ऐसा नहीं है कि एक बच्चा जैसे खेलेगा तो नौकरी मिलती है, मैं खुद भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ इस टाइम, मेरे को स्पोर्ट्स कोटे से ही नौकरी
मिली। मतलब स्पोर्ट्स की वजह से आपको गवर्नमेंट जॉब मिली?
बिल्कुल मैम,
क्या बात
है। और मैम एक वो भी है कि आज मैं वही बात करी ना, अनुराग ठाकुर जी ने इतनी अपॉर्चुनिटी हिमाचल में फैसिलिटीज दे दी हैं एक प्लेयर्स के लिए, एकेडमी से लेके उसके नेशनल प्लेयर बनने तक की सारी फैसिलिटीज उन्होंने मतलब हिमाचल में ला दी हैं, तो फिर वो इजी है। आप प्रोफेशनल लेवल पे क्रिकेटर खेल रहे हो तो एक अपॉर्चुनिटी आप देश को रिप्रेजेंट करने के लिए जा सकते हो, आपको नौकरी में अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और बहुत सारी चीजें जहां से क्रिकेटर को, बल्कि अर्निंग अच्छी है आज के टाइम में, रणजी ट्रॉफी खेल रहा है कुछ है तो उसमें भी अर्निंग अच्छी है एक प्लेयर्स के लिए।
तो मतलब आजकल के जो बच्चे खेल रहे हैं वो करियर क्रिकेट में भी बना सकते हैं।
बिल्कुल मैम,
ठीक है। और अगर आगे बढ़े, जैसे कि हम लोग बात करें क्रिकेट की, तो जब फर्स्ट टाइम आपके नाम के साथ क्रिकेटर जुड़ा था तो उस टाइम आपकी क्या फीलिंग थी?
मैम देखिए, जब फर्स्ट टाइम मेरा क्रिकेटर वर्ड्स जब सुना ना, तो मुझे
जी
ये थोड़ा सा फील हुआ कि जिस राह के लिए मैंने बचपन से शुरू करा, क्योंकि हर बच्चे की एक ख्वाहिश होती है कि इंडिया की जर्सी डालना, तो उसके लिए एक स्टेप बनता है कि एक रास्ता पाथ दिखती है कि वहां पर पहुंचने के लिए, तो जब उस पाथ में जब नाम जुड़ा, लगा कि क्रिकेटर वर्ड आया, तो एक बड़ा खुशी की बात थी मेरे लिए, खुशी होती भी है उस चीज को लेके। और दूसरी बात थी कि मैम मुझे ना ज्यादा स्पेसिफिक पता नहीं था कि क्रिकेटर, तो मेरा एक फ्रेंड है प्रशांत चोपड़ा, वो खुद हिमाचल से रणजी ट्रॉफी खेला है, अंडर 19 इंडिया खेले हुए हैं, आईपीएल खेला हुआ है
जी।
तो उसको मेरे से ज्यादा खुशी थी, उसने मुझे उस दिन बोला, मेरे को आज भी दिन याद है, कहते विनय चल आज मैं चाय पिलाता हूँ और तेरे को डिनर कराता हूँ, आज प्रोफेशनल क्रिकेट। मैंने कहा क्यों? कह रहा रणजी ट्रॉफी में तेरा अब गूगल पे नाम आएगा और ये चीज होगी। मैंने कहा अच्छा ऐसा है? बोलते हाँ। तो क्योंकि मैम जूनियर लेवल तक तो क्या है कि आपकी कटिंग तक निर्भर होता है कि आपका वहां पे कटिंग्स आ गई न्यूज़पेपर में आ गई, जब आप रणजी ट्रॉफी खेलते हो या प्रोफेशनल क्रिकेट में जाते हो तो आपका एक ना पूरा रिकॉर्ड उसमें गूगल्स पे आ जाता है बीसीसीआई के थ्रू में, तो वो एक थोड़ा सा मेरे लिए मोमेंट था, मेरे दोस्त ने मेरे लिए वो उस टाइम किया बताया और उसको ज्यादा खुशी थी।
तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वाली फीलिंग होगी।
हाँ मैम थी, उतनी तो थी क्योंकि बहुत मेहनत करी थी इस चीज के लिए। मतलब
जैसे आपने कहा कि मेहनत करी थी, तो कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई 14-15 साल का बच्चा अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके साथ उसे अपने एजुकेशन को भी बैलेंस करना है, तो कितना इसमें टाइम देना पड़ता है कि उसका एजुकेशन भी बैलेंस हो पाए।
मैम इसमें क्या है कि देखिए, जब हम छोटे से शुरू करते हैं तो आपको बैलेंस करना जरूरी आना, क्योंकि फैमिलीज की भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, एक मिडिल क्लास फैमिलीज की, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आज, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से प्लांट की तरह बच्चे को तैयार किया होता है कि कल को वो मेरा उत्तराधिकारी, मेरे को संभाले, फैमिली को संभाले, तो उनके साथ साथ मैं स्टडी को और उनके, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लूं तो मेरे फादर का मेरा एक विजन था कि भाई पढ़ाई जरूर करनी है, मुझे पढ़ाई चाहिए, पढ़ाई फर्स्ट है,
इसके अलावा जो करना है
जो करना है। अब मेरा ये रूटीन होता था बचपन में कि भाई मैं स्कूल से आया, स्कूल से आते मैं सीधा एकेडमी से गया, एकेडमी से अगर 10 बजे वापिस आ रहा हूँ, 9:30-9:10 बजे वापिस आ रहा हूँ, होमवर्क करना है, होमवर्क के साथ में सुबह 4 बजे वही रूटीन, दोस्तों के साथ में मैट लगानी है, फिटनेस करनी है, वो सारी चीजें थी उस पीरियड में।
सब 10:30-10 बजे आकर फिर होमवर्क करके फिर अर्ली मॉर्निंग उठते थे।
यस मैम, उसमें उठते थे, फिर उसमें वही प्रैक्टिस करनी, कई बार स्कूल में जाना, टीचर्स ने पीटना क्योंकि होमवर्क, कई बार अब होमवर्क कर लिया, अब उसमें लर्न भी करना होता था, उसने बोला होता था कि कल ये टेस्ट होगा, वो भी नहीं कर पाते
थे। क्रिकेटर को पिटाई भी खानी पड़ती
है, पिटाई भी खानी पड़ती थी, कई बार मैम क्लास में सो जाते थे।
अच्छा,
क्योंकि अब टाइम नहीं होता था बीच में, और प्रैक्टिस पे तो जरूर जाना क्योंकि वो जुनून सबसे ज्यादा था।
सारा फिजिकल एक्टिविटी होता था,
सारा फिजिकली एक्टिविटीज था, और ट्रैवलिंग था, क्योंकि मैं जब दिल्ली में आया तो एकेडमीज दूर थी उस टाइम बहुत। जब मैं जो स्टार्टिंग के टाइम की बात करूं, जब मैं 13-14 साल था, उसके बाद तो मैं HPCA में टर्न हो गया कि वहीं सारी फैसिलिटी हुई। उससे पहले जब आता था मैं जाता था एकेडमी से, आता था वापस, फिर स्कूल में जाना, स्कूल का बहुत ज्यादा प्रेशर होता था, टीचर्स सुबह ये करती थी कि भाई खाना भी कई बार स्किप करना पड़ जाता था। मैं
ओके, तो कितने घंटे देने पड़ते थे?
मैम घंटे यही है कि जैसे खत्म हुआ हमारा, स्कूल खत्म हुआ, सीधा प्रैक्टिस पे चले जाते थे, तो सुबह से शाम जब भी होता था अंधेरा नहीं हुआ,
7-8 hours मिनिमम मान लो
उस टाइम, तो जब छोटे थे तो तब इतने, अब बड़े जब हो गए तब तो अब हमारा पैटर्न बना हुआ कि सुबह इतने बजे हमारी ट्रेनिंग करनी है, इतने बजे हमें क्या बोलते हैं उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, ड्रिल्स करनी है, तो पूरे मतलब मान के चलिए कि 3-4 घंटे प्रैक्टिस को पूरे दिन में देते ही देते हैं।
और आज के टाइम में कैसे प्रैक्टिस करते हैं आप लोग?
मैम आज के टाइम में तो देखिए मेरा शेड्यूल ये है, जब ऑफ सीजन है तो मैं सुबह ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ, ट्रेनिंग के बाद मैंने क्या बोलते हैं जिम्स के लिए जिम ट्रेनर हायर किए रखे हैं, तो वो हमारे उसमें, और दूसरा है कि मेरा एक वो होता कि जब मैं पूरे सीजन में खेल के आया ना मैम, तो मैं दो चीजें नोट करता हूँ, एक डायरी में लिखता हूँ कि मैंने क्या क्या पूरे सीजन में अच्छा किया और क्या क्या मेरी गलतियां हुई, एक फ्रेंकली करके उसको नोट करता हूँ, फिर 5 दिन के लिए बंद कर देता हूँ कॉपी, उसके बाद खोलता हूँ जो कमियां होती है ना उस पर तैयारी करना शुरू करता हूँ। क्योंकि देखिए आपको हर साल आपकी क्रिकेट एसोसिएशन भी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि आप इस लेवल पे पहुंचो, थोड़ा सा आपको इंक्रीज करना है, तो आपको वो वेरिएशन या लेंथ और वो सारी चीजों में वैरायटी लानी पड़ेगी अपनी गेम में। तो मैं उसमें हर साल कुछ ना कुछ ऐड ऑन करता हूँ अपने उस चीज में लिमिटेशन
जी।
और फिर मैं उसको पूरे जब मेरा ऑफ सीजन होता तो मैं ट्रेनिंग के और उस प्रैक्टिस में हावर से एक एक घंटा उसमें प्रैक्टिस करता हूँ कि ये चीज, क्योंकि किसी भी चीज को मान लीजिए मुझे आउटस्विंग पे ही काम करना बहुत अच्छे से, तो मैं उसमें कम से कम डालूंगा, कम से कम एक दिन में मैं उसको 200-250 बॉल्स डालूंगा, तभी तो मेरा वो पैटर्न बनेगा ना, वो रिदम आएगा कि मैं जब मन करूँ आउटस्विंग, जब मन करा इनस्विंग, जब मन करा यॉर्कर, क्योंकि
सोचना नहीं पड़ेगा बॉल डालने से।
बिल्कुल मैम, कि हमने सोच लिया इसको आउटस्विंग पे वीक है तो बस वो हमने कर रखी है प्रोसेस, इंटेंट अच्छा था प्रैक्टिस में, वो मेहनत से करा था तो वो चीज,
जैसे अकॉर्डिंग टू क्रिकेटर आपको बॉल डालने हैं।
हाँ जी जी।
ओके, तो इसमें जितनी चीजें आप बता रहे मुझे काफी प्रेशर फील हो रहा है, तो मेंटल प्रेशर कभी होता है?
मैम देखिए मेरा एक मानना है, आप क्रिकेट में मेंटली स्ट्रोंग होंगे तो आप कोई भी स्पोर्ट्स होगा आप तभी खेल सकते हैं
जी।
जो आपके 50 मन है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा तो वो उसमें बेस नहीं है, क्योंकि एक क्रिकेटर को सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, और अगर वो कॉन्फिडेंट है तभी वो चीज को फुलफिल कर सकता है और वो ग्राउंड्स में उतर जाता है। डरपोक वो कि मैं करूंगा नहीं कर पाऊंगा, डर का कोई मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स में,
एक तो मतलब डर की बात हो गई और दूसरा ये हो गया कि बहुत लोग हार एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि मैं आउट हो गया। तो कभी आप अगर आउट हो गए या कभी मैच हार गए तो उस चीज को आप कैसे लेते हैं?
मैम देखिए हर दिन ना बैड दिन भी होगा और बेटर दिन भी होगा, तो मेरा एक चीज का मानना है कि मैं 99% एक चीज में फोकस करता हूँ कि मुझे टीम में विनिंग नोक पे जाना, कि टीम की विनिंग में मेरा ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो। जैसे 10 मैच हैं उसमें से 5 या 6 मैचों में मेरा विनिंग में कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो, तो मेरे लिए स्पेसिफिक एक चीज का है इसमें कि हम उस पॉइंट पे जब जाते हैं विनिंग नोक्स टीम के लिए कंट्रीब्यूशन जब करने जाते हैं तो आपका माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका माइंडसेट में सबसे ज्यादा आप पे टीममेट आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आप टीममेट को पता है कि इस सिचुएशन में ये बोलना है, पर आप अगर डाउटफुल हो उस मोमेंट्स में कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उससे टीम का जो कॉन्फिडेंस है और टीम के जो शोल्डर डाउन होंगे ना वो भी होंगे, तो इसलिए आपको अंदर से कुछ स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और आपको सेल्फ बिलीव होना जरूरी है कि मैं कर सकता हूँ।
लाइक पॉजिटिव माइंडसेट एंड विनिंग माइंडसेट।
बिल्कुल मैम,
इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें अपने अकॉर्डिंग।
मैम देखिए पॉजिटिव माइंडसेट यही है कि थॉट्स कम लेने हैं, आपका एक माइंडसेट बना है कि मुझे करना है तो मैं करना है, क्योंकि वो तभी आएगा आपका पॉजिटिव माइंडसेट जब आपने जो प्रैक्टिस करी है उसमें आपका इंटेंट अच्छा है, आपने शिद्दत से उसमें प्रैक्टिस करी है, पूरे साल मेहनत करी है और आपने उस अपनी प्रैक्टिस को हार्ड बनाया है, जितना हार्ड वर्क उस आपने रेस्ट पीरियड में किया होगा तो आपका माइंडसेट में कोई डाउट नहीं आएंगे, थॉट्स नहीं आएंगे। अब विनिंग माइंडसेट के लिए भी वही है कि विनिंग क्या है, आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो किसी टीम में, जब आप मैच खेल रहे हो तो आप उसके लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। अगर आपके थॉट्स ये सारे चीजें खत्म है तो आपके लिए जो टीम मेट्स ने या कोच ने जो प्लान बनाया ना तो आप उसको 100% इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। तो यही ज्यादा मेरे हिसाब से, तो यही मैं जो मानता हूँ इसी चीज को ज्यादा तवज्जो देता हूँ।
तो कहने का मतलब है कि आप अपना प्रैक्टिस पूरा रखो और पॉजिटिव माइंडसेट के ये से उतरो और ज्यादा आप सोचो मत एंड आप खेलो।
बिल्कुल मैम।
ओके, जैसे कि आप फास्ट बॉलर हैं और इंडिया में पहले फास्ट बॉलर का क्रेज काफी कम था, लेकिन आज के टाइम में इसके डिमांड काफी है, तो आप इसके बारे में थोड़ा बताएं।
पुराने टाइम में था तो फास्ट बॉलिंग का कल्चर, बैटिंग का इंडिया में बहुत ज्यादा कल्चर जी, तो बॉलिंग में फास्ट बॉलिंग में स्विंग बॉलर बहुत ज्यादा होते थे, तो अब क्या है, अब वो चीज़ नहीं है। इंडिया में जब से वो फैसिलिटीज़ आई हैं, सारी चीज़ें बीसीसीआई ने मैनेज करी हैं या क्रिकेट एसोसिएशन ने अपने अपने स्तर पे उस चीज़ को कराया, तो बहुत सारे अब तेज़ फास्ट बॉलर भी आ रहे हैं इंडिया में और जो 150 प्लस डाल रहे हैं, 140 प्लस डाल रहे हैं, और इससे थोड़ा सा जो फैसिलिटीज़ मिलने की वजह से ये सारी चीज़ें इंडिया में
टैलेंट निखर के सामने आ रही है। राइट, तो इसमें काफी ज्यादा इंजरी की भी चांसेस होते हैं, जैसे आपने कहा कि आपको नी इंजरी हुई थी, वो कैसे हुआ था?
मैम देखिए फास्ट बॉलिंग जो 150 प्लस डालेगा उसकी ट्रेनिंग हार्ड होगी, उसका 100% होगा, 150 तक वो जाता है, तो मसल हर तरीके से मसल यूज होता है, किसी मसल पे ज्यादा लोड आया कुछ आया तो उसमें क्या है ब्रेक डाउन हो जाता है फास्ट बोलिंग। तो इंडिया में तभी बोलते हैं जब ज्यादातर स्विंग बोलर ज्यादा सर्वाइव करते हैं, सर्वाइव इस वे में करते हैं क्योंकि दोनों साइड में उनको स्विंग मूवमेंट्स करनी है ठीक है, और उनकी जो स्पीड्स है वो भी 135-25 के बीच में अराउंड में इस चीज को चलती है और लाइन लेंथ में। तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को लगता है कि इंडिया में फास्ट बॉलिंग का कल्चर इसलिए भी अच्छा बना है क्योंकि हर स्टेट अच्छे तरीके से उस चीज को यूटिलाइजेशन कर रही है, प्लेयर्स को फैसिलिटीज दे रही है, तो बच्चा बन के आ रहे हैं। तो उसमें हमारे लिए आज के टाइम में तो देखो इंडिया टीम में 10-15 लोग अभी भी लाइन में लगे होंगे इंडिया रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई तेज बॉलर की डिमांड है तो फास्ट बॉलिंग भी 150 प्लस पड़े हुए, स्विंग की तो स्विंग भी इंडिया में बहुत लोग पड़े हुए हैं।
आपने कहा कि उसकी ट्रेनिंग काफी हार्ड होती है, तो ट्रेनिंग कैसी होती है उनकी?
जो स्पीड है ना वो नेचुरल है, किसी भी प्लेयर की अगर स्पीड 150 प्लस है तो उसके नेचुरल है, उसमें हम उसको स्ट्रेंथ से, उसकी फिटनेस, डाइट से और उसकी स्किल वाइज में जो उसकी गलतियां हैं उसको थोड़ा और बेटर कम करके तो वो अपना पूरा 100% उसका बॉडी का पूरा पार्ट उस बॉलिंग बॉल की तरफ डाइवर्ट हो रहा है तो वो 150 प्लस निकाल स्पीड्स को पेशेंट कर बढ़ रहा है। तो वही चीज है कि वो ट्रेनिंग का पार्ट है, वो आजकल एसोसिएशन में मैंने आपसे बात पहले भी बताया कि जिम ट्रेनर्स आपको फैसिलिटीज बीसीसीआई ने दे रखे हैं, एसोसिएशन ने दे रखे हैं, डाइटिशियन दे रखे हैं, हर तरीके का एक प्लेयर को ना पूरी मतलब एक
पूरा पैकेज दिया जाता है कंप्लीट
पैकेज और फैमिली की तरह उसको संभाल के रखते हैं कि ताकि ये हमारे लिए रिप्रेजेंट करेगा स्टेट को या इंडिया को।
हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाता है।
जी मैम,
हर क्रिकेटर का सपना होता है इंडिया के लिए खेलना, तो आप इस सपने को कितने करीब से देखते हैं?
बचपन में वही सब सोचते हैं कि इंडिया खेलना है, हम भी उसी को इतने उसी के लिए हमने जूनियर लेवल से आज तक खेलते आ रहे हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, तो यहीं से मैं देखता हूं कि यहीं से अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हमारा काम है अपनी प्रैक्टिस में इंटेंट अच्छा रखना, चाहे हम गली में खेल रहे हैं या क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं या आप रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, ये है अपना 100% देना है। देखिए आगे इंडिया की जर्सी मिले ना मिले जो भगवान ने लिखा, क्योंकि गोल्ड ही है जो सब कुछ दे सकता है आज के टाइम में, और वही मैं बिलीव ही उसी चीज पे करता हूँ। हमारा काम है एक काम करना, हाँ उस पाथ में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उस राइट पाथ की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं।
जी।
आगे खेलना नहीं खेलना सब भगवान का है, वो चाहेंगे तो खेल सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं, पर आपकी मेहनत में वो चीज में
कंटिन्यूस में लगे रहो
बिल्कुल।
क्या आपने कभी इंडियन टीम के साथ के किसी प्लेयर के साथ में कभी बॉलिंग की है या कभी किसी को आउट किया है?
मैम देखिए बॉलिंग भी करी है और आउट भी करा है, बहुत सारे प्लेयर्स को भी आउट करा है क्योंकि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलोगे तो सब वहीं पे खेलने आते ही हैं।
इंडियन क्रिकेट टीम के बहुत सारे प्लेयर्स को आउट करा है।
बिल्कुल मैम, बहुत मतलब बहुत सारे, मतलब 10-12 लोग, 15 लोग जो भी होंगे, जब भी क्योंकि खेलते रहते हैं तो उनको तो आउट किया ही, अभी लेटेस्ट भी मैंने 2-3 को आउट कर गया।
नाम बताएं प्लीज।
मैम जैसे हमारा आंध्रा से मैच था, KS भरत जी थे, हनुमान बिहारी जी थे जो अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, और हमारा एक पौंडीचेरी से मैच था, उधर पे क्रिकेटर थे बहुत, मतलब कर ही रहे हैं मैम अभी लेटेस्ट।
तो सबसे पहले किसे आपने आउट किया था इंडियन टीम के प्लेयर को?
मैम सबसे पहले मेरा डेब्यू सीरीज थी, जब मैंने रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया था तो मैंने सुरेश रैना जी को आउट किया था, तो वो थोड़ा था मेरे लिए अच्छा मूवमेंट।
अच्छा, तो कितना रन बनाया था उन्होंने?
मैम रन तो देखो मैंने जब बॉलिंग करी थी तो मेरे खिलाफ तो उन्होंने एक रन बनाया था, दूसरे पे मैंने आउट कर दिया था।
अच्छा,
तो मैं 7-8 बोले ही खेली थी तो उसके बाद वो आउट हो गए थे।
ठीक है, तो उस टाइम में आप उन मतलब क्या बात करी, उन्होंने कुछ आके आपसे कुछ कहा कि सुरेश रैना को आपने आउट करा तो भाई कौन लड़का है, कौन न्यू बॉलर आ गया, कुछ ऐसी फीलिंग थी?
मैम ऐसा तो नहीं, शाम को जैसे होती है जैसे बात होती है तो मेरा फ्रेंड ऋषि धवन इंडिया प्लेयर थे तो उनसे आपस में बात हुई, तब उन्होंने सुरेश रैना जी वहां पे मेरे से भी मिले थे तो उन्होंने बोला कि वेल बॉल छोटू बहुत अच्छी बॉलिंग डालता यार, तो बस इतनी सी बात हुई थी, वही हमारे लिए बहुत ज्यादा
एक रन में मुझे आउट कर
नहीं वो तो मैम उनका था, पर वो एक जूनियर को वो करेगी, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देके गए थे उससे कि मैं एक इंडिया प्लेयर को आउट कर रहा हूँ जो करंट खेल रहा है, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया था उस चीज से उनकी बात करके कि नजदीक से बात हो रही है।
जी,
और रही बात मैम खेलने की, तो मेरी एक मेरा हमेशा आइडल रहे हैं ऋषि धवन, तो मैं उन्हीं के साथ में हिमाचल, वो खुद इंडिया रिप्रेजेंट करें, मैं उन्हीं के साथ में हिमाचल में फर्स्ट ओवर में डालता हूँ, सेकंड वो डालते हैं, तो मैं उनके साथ वो तालमेल तो हमेशा रहा ही है। मैंने विजय हजारे ट्रॉफी में भी उनके साथ बहुत, उनका बहुत, उन्होंने हिमाचल के लिए विकेट ली, उसके साथ में मेरा भी कंट्रीब्यूशन उनके साथ में था, तो मेरा एक वो था, सपना भी था कि मैं उनके साथ बॉलिंग करूंगा, खेलूंगा, तो वो हमने एक साथ बहुत मैचेस करे हैं,
एक मैच में मतलब कई सारे मैचेस आपने साथ में करे,
क्योंकि वो हिमाचल के कप्तान भी रहे हैं और हिमाचल को मैं भी रिप्रेजेंट करता हूँ, तो उनके अंडर ही हमें खेलना पड़ खेलते हैं हम, तो साथ में वो भी एक एंड से बोल डालते हैं दूसरे एंड से, तो वो भी हमारी, और एक मेरा था भुवनेश्वर कुमार से, क्योंकि मैं उनको बहुत मतलब फॉलो करता रहता था स्विंग बॉलिंग, क्योंकि मैं भी स्विंग ही ज्यादा करवाता हूँ, तो मैं उनको फॉलो करता, तो मेरी वो ड्रीम थी कि उनसे, तो हमारे रणजी ट्रॉफी मैचेस में वो मिले थे धर्मशाला में, जैसे आईपीएल के होते हैं तब हम नेट बॉलर होते हैं, तब उनके साथ बॉलिंग बोल डाली थी और उनसे बात करी थी, तो वो भी बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, जो ऋषि धवन ने जी ने बताया वही सेम बातें, वही कॉन्फिडेंस की सेल्फ बिलीव होना जरूरी है, कि आप इन स्विंग डालने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, आपके डाउटफुल होने, तो वो आपका प्रैक्टिस से ही आता है वो सारी चीज़।
बिल्कुल, उस टाइम अगर आप थोड़ा सा भी नर्वस होंगे तो चीजें खराब हो जाएगी।
बिल्कुल बिल्कुल मैं।
तो हिमाचल ने जैसे विजय हजारे जैसे ट्रॉफी को जीता, तो उसके बाद क्या रिएक्शंस था, क्या मतलब वहां पे माहौल था?
मैम सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उस सीरीज में और उस मतलब पर्टिकुलर ईयर में ना एक वाइब्स बनी थी कि भाई जीतने की, हमारे कोच थे अनुज पाल दास जी उस सीरीज में, और अनुज पाल सर के साथ में ना हम वो आपसे बात करी रेजिडेंशियल एकेडमीज में, तो हम 10 उसमें से 6-7 लोग ऐसे थे जो उनके साथ बचपन से ही उस एकेडमीज में प्रैक्टिस करते आ रहे थे, और वो उस इवेंट्स का ये था कि मैम सब लोगों ने एक ही बात कर रहे थे कि जीतना है जीतना है जीतना है जीतना है। सबसे बड़ा एग्जांपल मैम मैं और मेरा रूममेट होते थे प्रशांत चोपड़ा, तो हम जैसे मैं उस सीरीज में पहले टीम में नहीं था, मतलब जब विजय हजारे की टीम अनाउंस हुई थी तो मैं नहीं था, मैं कोई इंजर्ड हुआ तो मैं उसकी जगह रिप्लेसमेंट में उस टीम में आया, तो मेरा माइंडसेट था कि यार मेरे को परफॉर्म करना है, अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि मैं ड्रॉप हुआ था उस सीरीज में, तो मेरे अब मेरा रूममेट था प्रशांत चोपड़ा, मैंने उससे बात करी यार इस साल ना मेरे को परफॉर्म, कह रहा परफॉर्म नहीं करना है, इस साल हमने टीम को जितवाना है, ये विजन से चलेंगे हम। मैंने कहा यार वो तो है पर हमारे हाथ में तो नहीं है कि विकेट लेना है, कह रहे तुम पहला ओवर डालता है, तेरा काम लाइन लेंथ पे बॉल डालना है, मेरा काम है मैं विकेट पे स्टे करके रन। मैम हमने टोटली उस विजय हजारे के टूर्नामेंट
स्ट्रेटजी बना ली पूरी,
नहीं हम दोनों का था, टीम्स का तो कोचेस का काम था और कैप्टन का काम था, हम दोनों का ये था कि हम जितने भी मैच खेलेंगे वो टीम की विनिंग नॉक्स में होंगे, और मैम इसका हम धीरे धीरे हर स्टेप बाय बाय अच्छा करते जा रहे थे, तो हमारा क्वार्टर फाइनल मैच हुआ था उसमें मैंने बहुत यूपी के साथ में मैंने बहुत ब्रिलियंट बॉल मतलब अच्छा स्पेल डल गया जो भी था लाइव मैच था तो उसमें अच्छा स्पेल डल गया, और उसमें तो हमारे कोच ना शाम मतलब अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट पे हम दोनों नीचे आए, तो उन्होंने बोला कि यार क्या कर रहे हो, दोनों के न्यूज़पेपर में फ्रंट फोटो लगी हुई है दोनों की बोलते, तो हम दोनों ने उस टाइम जाते जाते लेफ्ट में एक ही बात करी यार हम जो सोच रहे हैं हम सही जगह पे सही पाथ पे जा रहे हैं, और मैम वही इंटेंट था कि मैं उस टूर्नामेंट में सब इंडिया का सेकंड इकोनॉमिकल बॉलर था, 3.25 की इकोनॉमी से मैं पूरे टूर्नामेंट में विजय हजारे में बोल डाली थी, थर्ड या फोर्थ में हाईएस्ट विकेट टेकर था पूरे इंडिया का विजय हजारे ट्रॉफी में उस दौरान, क्योंकि हमारा इंटेंट और बातें ही होती थी हमारे रूम में दोनों की, तो एक वाइब्स ही टीम में ऐसे बन गई थी जीतने की। मैम जैसे हम विजय हजारे ट्रॉफी जीते तो बहुत सारे कमेंट्स आना शुरू हुए, बहुत सारे अप्रिसिएशन आने, कपिल देव जी का भी आया था वो 1983 पे जो वर्ल्ड कप पे जो एक मूवी बनी थी तो उस दौरान वो रिलीज हो रही थी, तो कपिल देव जी ने बहुत बड़ा ट्वीट लिखा था कि ये टीम उसकी तरह ही उभर के बाहर आई हुई है एक छोटी सी स्टेट से बोलते, और कपिल देव सुनील गावस्कर जी ने उसमें मारे, बहुत सारे और क्रिकेटर्स ने मारे, एक्स क्रिकेटर प्रेजेंट क्रिकेटर सब लोगों ने इस हिमाचल एसोसिएशन की तरफ से बहुत सारा प्रोत्साहन मिला उस पूरे टूर्नामेंट,
किसी को एक्सपेक्टेशन ही नहीं था कि इतनी बढ़िया जीत आप लोग हासिल करोगे।
मैम एक्सपेक्टेशन नहीं था पर एक इंसान को जरूर था जिसने 15-20 साल पहले ये सपना देखा था, अनुराग ठाकुर जी जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो एक बिजनेस, उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें सोची हुई थी लाइफ में और उनको वो सपना था, हम एक जरिया थे, मैंने बताया ना कि आते उन्होंने सबसे पहले रेजिडेंशियल एकेडमी खोली, उस एकेडमी से 5-6 लड़के इस विजय हजारे ट्रॉफी में थे, तो सपना हम लोग तो शायद नहीं देख रहे थे पर शायद उस इंसान ने उस टाइम देखा था अनुराग जी ने, जो हम उसको शायद हमारे माध्यम से हम उसको फिल कर पाए, जो देश पूरे हिमाचल को खुशी देगी, वो एक ट्रेंड टाइटल लाने के बाद हिमाचल के बच्चों के लिए सबके लिए एक सेट कर दिया कि हम भी वो चीज कर सकते हैं
उन्होंने। राइट, बहुत बड़ी बात है सर। जैसे आपसे अभी बात हो रही है उसमें मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि एक स्पोर्ट्समैन के लिए डाइट भी उतना ही ज़रूरी है, प्रैक्टिस भी उतना ही ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी उतना ही ज़रूरी है। तो एक कॉमन मतलब आप अगर बताएं तो कौन से मतलब डाइट फॉलो करना चाहिए या कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए? जी
मैम देखिए, पहली बात आती है ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग जितनी आप दिल से करेंगे, आपका 100% उसमें इंटेंट होगा। मतलब आपको ये फील होना चाहिए ट्रेनिंग में कि आज आपने मेहनत करी है, और आप जब घर वापस जा रहे हैं रास्ते में, तो आपको ये फील होना चाहिए कि यार मैंने आज 100% से अपना एफर्ट करा है। ऐसे नहीं कि आप ट्रेनिंग करने आए हैं और बस स्पेसिफिक ट्रेनिंग थोड़ी देर करी और बस पार्ट किया, और कि मैंने अपना टाइम, वो चीज़ नहीं। एक स्पोर्ट्समैन को जितना वो इंटेंट से प्रैक्टिस में अपना 100% देगा,
मतलब
जो
पूरा अपना 100% देना होगा उसे।
बिल्कुल 100% देना होगा, तभी मैम आपके वो चीज़ें जो आपके क्रिकेट करियर में हेल्प करेंगे, जब सिचुएशन बनेंगे, प्रेशर आएगा, तो वो हेल्प करेगा ना उस दौरान
जी
में। अब बात आती है कि ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग भी एक पार्ट है। जैसे मैं फास्ट बोल रहा हूँ, तो मुझे एज स्पेसिफिक फास्ट बोलिंग ट्रेनिंग करनी है,
जी
कि मुझे रनिंग भी लॉन्ग रनिंग करनी है, मुझे एजिलिटी पे काम करना है, मुझे अपने रनअप पे काम करना है, या मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। तो मैंने तो स्पेसिफिक ट्रेनर, जैसे HPCA में बहुत अच्छे ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है धर्मशाला में, तो मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। दिल्ली में भी मैंने यहाँ ट्रेनिंग करता हूँ, दिल्ली में जब मैं होता हूँ ऑफिस वर्क के साथ साथ में, तो दिल्ली में भी करता हूँ। अब बात आती है डाइटिशियन की, तो मैम देखिए, हर इंडिविजुअल का अपना एक डाइट प्लान होता है। मेरा एक सिंपल प्लान है कि मैं सुबह मील लेता हूँ हैवी, दोपहर को थोड़ी सी हाई कर दी, शाम को हल्का स्नैक्स, और इवनिंग में मैं 8 बजे के बाद खाना नहीं खाता हूँ। कभी लिटरली हो गया कि महीने में एक आधे बजे, जब मैं घर पे हूँ तो मेरी फैमिली को पता है कि मुझे 8 बजे से पहले खाना देना है, तो मैं खाऊंगा नहीं।
तो
और उन
डाइट में मतलब घर का ही सारा खाना खाते हो?
बेसिकली घर का ही ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं उसी पे ज़्यादा, जैसे फ्रूट्स हो गया, आपका बॉयल्ड एग्स हो गए, आपका ओट्स हो गए, ब्राउन ब्रेड्स होगी, मतलब स्पेसिफिक उसी चीज़ें जो प्रोटीन, हर मील्स के थोड़ी थोड़ी मील्स, मतलब जितना प्रोटीन एक इंटेक करना पड़ेगा एक प्लेयर को चाहिए दिन में, वो धीरे धीरे उसमें पूरा कवर कर
तो
लेते
ये
हैं।
हर प्लेयर के हिसाब से उसका डाइट चार्ट मतलब बनता होगा कि आपको इतना प्रोटीन लेना है।
मैम वो रिक्वायरमेंट है, आजकल डाइटिशियन हर स्टेट में प्रोवाइड है, तो वो आपको बता देते हैं कि आपको किस तरीके से डाइट लेनी
तो
है,
सबका
क्या,
डिफरेंट होता है
हाँ, किसी
डाइट।
को फैट बर्न करना है, किसी को फैट चाहिए, कितना इनटेक लेना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो सब कुछ आजकल बहुत सारा फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दिया है स्टेट एसोसिएशंस।
आपको क्रिकेट खेलते हुए कितने साल हो गए?
मैम मैंने 2006 में क्रिकेट खेलना शुरू किया था, जो मैंने हिमाचल स्टेट को रिप्रेजेंट किया था अंडर 15 में।
जी
तो 15 के बाद 16, 19, 23, 20,
लगभग 19 ईयर्स हो गए
19 ईयर्स
अभी।
आप मान के चलिए कि अभी तक
ठीक है,
कंटिन्यूटी में मैं हिमाचल।
तो आप क्रिकेट खेलने के दौरान, ये 19 साल काफी टाइम लंबा टाइम होता है, तो इसमें आपने कौन सा लाइफ का सबसे बड़ा लेसन सीखा?
मैम इसमें ना क्रिकेट ना आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं, आपके डाउनफॉल्स भी सिखाती है,
जी
आपको लाइफ में सिचुएशन भी देती है, प्रेशर्स भी देती है, हर तरीके से वो आपको उस चीज़ में वो करती है। और
जी
वही एक लेसन है कि जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छा करके आए पर आप सिलेक्ट नहीं हुए, कोई कोच है वो आप उसमें उसके एक्सपेक्टेशन पर भी बैठ रहे कि आप उसको कर सकते हो, उस टास्क को कर सकते हो,
जी
उसके आप वो कर दें, आपको सेल्फ बिलीव है पर आपको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं। आप बहुत अच्छा कर रहे हो पर आपको वो प्लेइंग 11 नहीं मिल रही है, या मैच नहीं खेल पा रहे हो, तो बहुत सारी डाउनफॉल्स होते हैं कि आप वो करना चाहते हो पर नहीं हो पाता। तो ये एक लाइफ के लिए एक लेसन है कि जो नॉर्मल लाइफ है ना, तो अब उसमें जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो बहुत इजी से लगता है, एक फन टाइम में निकाल देगा, ठीक है यार ये लाइफ का एक पार्ट है जो हम
जी
करते चलेंगे और होता रहेगा हमारे साथ
जो
में।
नेगेटिव चीजें हैं उससे फाइट करना सीखे आप।
बिल्कुल
मैं अपने थोड़े पर्सनल फेवरेट पे आती हूँ। वैसे तो मैं मैचेस उतना देखती नहीं हूँ, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जी मुझे काफी पसंद है। तो आप कभी उनसे मिले?
मैम, मैं उनसे 2-3 बार मिल चुका हूँ।
जी
एक बार हमारा रणजी का मैच था तो जिम सेशन में मिले थे, और एक बार मैं अभी धर्मशाला में, जैसे IPL मैचेस होते हैं तो
जी
वहाँ पे हम नेट बॉलिंग करने उनके लिए जाते हैं, और
जी
इंडिया का जब थे तो उधर भी नेट बॉलिंग है,
जी
तब उनसे 2-3 बार मिलना हुआ है। तो कॉमन सी बात हुई है, बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं,
राइट
और आज हिंदुस्तान के इंस्पिरेशन है वो सबके लिए बने हुए हैं।
जी
और मैम बहुत ही अच्छी, मतलब एक क्रिकेटिंग का ना, मतलब बता सकते हैं कि उनसे कोई भी चीज़ पूछेंगे ना, वो आपको बहुत अच्छा सा आंसर देंगे और आप उस चीज में, और आपको लगेगा ही नहीं कि वो आप किसी बड़े क्रिकेटर से बात कर रहे हो।
यही
ऐसे
बड़े इंसान की पहचान होती है
बिल्कुल बिल्कुल मैम,
जी।
ऐसे फील होता है कि बस वो बता रहे हैं कि बस एक कोच की तरह, एक बड़े भाई की तरह, कि ये चीज ऐसे होती है, ये सिचुएशन में ऐसा करना है। तो मतलब
जी
बहुत, ये तो मैं जब उनसे हम धर्मशाला में मिले थे, हम जो 3-4 क्रिकेटर खड़े थे, बस उन्हीं को देखे जा रहे थे, बस उनसे क्वेश्चन कर दिया था, बस देखे जा रहे थे वो क्या बोलेंगे क्या करेंगे। पर मैम अलग ही वो इंसान है।
तो विनय गलाटिया जी, अगर आप एक क्रिकेटर नहीं होते तो आप क्या होते?
मैम अगर क्रिकेटर नहीं होते तो शायद नौकरी कर रहे होते कहीं ना कहीं पे, कुछ ना
ओके,
कुछ इसी तरीके से कर रहे होते, और तो कुछ था नहीं
तो
लाइफ में।
सेकंड कुछ अल्टरनेटिव आपने सोच नहीं रखा था?
मैम उस टाइम तो कुछ नहीं था, क्योंकि एकदम मैं कह रहा हूँ ना आपको, जैसे बचपन में अंडर 13-14 13-14 साल में
बहुत
जुनून
कम
था,
इससे।
तो 15 साल में ही हमें नेशनल लेवल मिल गया, फिर कंटिन्यूटी में खेलते आए,
हाँ,
तो वो
अपॉर्चुनिटीज
सोचने का
मिल
मौका
गई,
ही नहीं मिला बीच में उस
राइट
चीज के बारे में। थोड़ा सा बीच में अप्स डाउन हुए, कई बार सोचा कि क्रिकेट खेलना छोड़ देंगे, कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई जैसे मदर मेरे चले गए, तो थोड़ा सा ऐसे अप एंड डाउन हुआ कि छोड़ देंगे, फिर वही दिखा कि करेंगे क्या, तो फिर कंटिन्यूटी में उस चीज को आगे करते रहे
तो
और
मतलब ऐसा, मतलब क्या डाउनफॉल आया कि आपको लगा कि क्रिकेट छोड़ देंगे?
मैम एक्चुअली मेरे साथ दो, मैं ना जूनियर लेवल पे जब अंडर 19 खेला तो मेरे मदर एक्सपायर हो गए, तो मेरे को ना ऐसा था कि एक मोटिवेशन था कि मेरी मदर से, कि वो हम मेरे को क्रिकेट में बहुत ज़्यादा, मतलब होता है एक मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा वो करते, समझ नहीं आया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरे को ऐसा हो गया कि मैं मतलब डिप्रेशन टाइप, जैसे बोलते हैं ना, एक बंदा अपने में ही खोया रहता था सारी चीज़ें, तो मैं उस तरीके से रहा। तो मतलब मेरे को बहुत हेल्प करी उस पीरियड में, मैं 19 था उस टाइम, मेरे कोच अनुज पाल दास जी ने, मेरे फ्रेंड सर्कल थे जो एकेडमीज हैं, अमन्यु राणा, प्रशांत चोपड़ा, ऋषि धवन, अजय मोहन, ये जितने भी, पवन ठाकुर, ये जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल थे, इन्होंने मुझे बहुत उस चीज़ से बहुत निकाला। क्योंकि मैं उस टाइम ना बहुत ये होता कि मैं कपड़े भी, एक बच्चे को पता नहीं होते कब कहाँ रखने हैं क्या करना है, तो वो हुआ था मैंने सोचा अब खेलना छोड़ देता हूँ। और मैम मेरा स्पेसिफिक एक चीज़ और भी थी कि लाइफ में जब मैंने खेलना शुरू किया था ना, तो मैं एज अ बैट्समैन था, बॉलर इस तरीके से बन गया कि वहां पे मैंने विकेटें ले ली, तो वो खेलते खेलते आया, जब 19 में आया, 19 तक तो मैंने बताया आपको कैसे भी क्रिकेट खेल सकते हैं, पर 19 के बाद आपका कंपटीशन बढ़ जाता है, आपके पास ब्रेशन होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, सारी चीजें। मैं उस टाइम बस एक लेंथ पे बॉल डालता था, तो मैं उस टाइम ये सोचता था कि मेरा लास्ट साल है, मैं क्रिकेट खेलना छोड़ दूंगा। तो मैं मैम साइड में एक नेट्स में 15-20 दिन से ना प्रैक्टिस कर रहा था स्टेडियम में, अपने जिले में ही, तो वहां पे प्रैक्टिस कर, वहां एक कैंप लगा, वहां पे ऋषि धवन जी आए, ऋषि धवन उस टाइम IPL खेल के, बस वो कैंप लगा था, वो ऐसे ही उस कैंप में 2-3 दिन के लिए आए हुए थे, तो देख रहे कि कोई लड़का 2-3 दिन से रेंडमली, मैं जानता भी नहीं था उनको, इसलिए बस यही था कि हिमाचल से है, फेस टू फेस कभी बात नहीं थी। तो मैं एक अलग से कोने में ना बॉल डाल के, कि तेज बॉलर बनना है, 140 फेंकनी है, क्योंकि मेरे पास तो स्विंग है नहीं, कुछ है नहीं, पता भी नहीं था बॉलिंग का, तो मैं किट बैग रख के बस भाग के उस किट बैग डिंडा जी को देखा था उस टाइम में, कि वे किट बैग से तेज होते हैं, स्पीड ऐसे रख के ट्रेनिंग में फाट के, तो मैं उसको देख के वो कर रहे जा रहा था, तो वो ऐसे ही देखते देखते मेरे पास पहुंचे, बोलता यार क्या कर रहा है, मैंने कहा ऐसे ऐसे करो, तो उन्होंने सबसे पहले किट बैग हटवाया, कह रहा ये हटा कैसे बॉल पकड़ता है, तो उन्होंने थोड़ा सा बताया स्विंग, वो बॉल वहां ऑफ स्टंप के बाहर पड़ा और इतना स्विंग हुआ बॉल पे लगा, तो उन्होंने उस दिन मतलब बहुत स्विंग होने लगा, तो उन्होंने सोचा कि एक दिन है ऐसे ही हो गया होगा, नेक्स्ट डे भी मैं वो चीज करने लगा, वो कंटिन्यूटी में आने, तो उनको कॉन्फिडेंस है नहीं यार ये लड़का, मैं इसको बताया और ये स्विंग कर रहा, मेरे को कॉन्फिडेंस, वहां मेरे कोच थे अनुज पाल दास जी अंदर कैंप ले रहे थे, तो धीरे धीरे हम वहां पे अंदर प्रैक्टिस में लेकर मैंने विकटे लेना शुरू कर दिया। और मैम उस दिन के बाद मैं उनसे ऐसे कंटिन्यूटी, और उस इंसान ने मेरे साथ ऐसे भाई की तरह सपोर्ट कर, मतलब बताया सारी चीजें, इंडिया प्लेयर हो, उसके बाद इंडिया भी खेले वो सारी चीजें, मतलब फ्रेंड की तरह की उन्होंने मतलब प्रॉपर बहुत हेल्प करी।
बहुत ज्यादा गाइड किया आपको कि बॉलिंग कैसे
ये
करते हैं
तो शायद
प्रॉपर।
मैं क्रिकेट छोड़ भी देता, क्योंकि आज मैं स्विंग कराता हूँ, दोनों साइड मेरी स्विंग हो रही है, वेरिएशन हो रही है, सिचुएशन हैंडल करना, उसने बहुत ज्यादा मतलब उसमें हेल्प करी, उसने मेरे कोच अनुज पाल दास जी ने,
जी
और
जी
जितने भी और हिमाचल के कोचेज आए बहुत ज्यादा, कृष्ण मोहन सर थे, विक्रम राठौर जी थे, और भी बहुत सारे, तो मतलब वो पीरियड मतलब उस इंसान की वजह से थोड़ा सा मेरी लाइफ में, आज मैं और लंबा क्रिकेट खेला, बड़ी क्रिकेट खेला, क्योंकि बड़ी क्रिकेट में क्या होता है कि मैम रणजी ट्रॉफी आप खेले तो 16 साल का बच्चा भी खेल सकता है, 19 साल वाला भी खेल सकता है, और 23 साल वाला, तो वहाँ कॉम्पिटिशन हेल्दी हो जाता है, तो
एक्चुअली
वहाँ
होता क्या है ना, जब आप कोई चीज को छोड़ने की सोचते हो कि अब बस इसका यहाँ पे एंड करना है, लेकिन डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है, तो एक नया मोड़ आ जाता है जिंदगी में।
बिल्कुल बिल्कुल मैम ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें ना लोगों का भी बहुत होता है।
जी
मैं जिस डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन से खेलते हैं वहाँ पे प्रेसिडेंट प्रेम ठाकुर जी और अनिल भाटिया जी, तो
जी
मैम मैं एक टाइम उनको भी बोल दे कि मैं नहीं खेलूंगा अब क्रिकेट, उन दोनों ने, मैं तो घर पे भी मना कर चुका था कि मेरे को, मैंने नहीं खेलना क्योंकि मेरे को भी, उन्होंने प्रेम ठाकुर जी ने और अनिल भाटिया जी ने जो क्रिकेट एसोसिएशन में, मैं कह रहे नहीं तुम आना है, उन्होंने जब मैं ट्रायल्स पे भी नहीं गया, जो डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल्स मैं गया भी नहीं, उन्होंने बोला नहीं तू आएगा बेटा
जी।
तो बहुत सारे होता है क्योंकि वो ना फैमिली की तरह तैयार, हिमाचल का एक कल्चर है जो फैमिली की तरह ना अपने बच्चों की तरह दूसरे बच्चों के बारे में सोचते, तो शायद आज उस वजह से मैं और क्रिकेट खेल सका।
बिल्कुल, तो आपने हिमाचल से लेके दिल्ली तक की जर्नी तय की और उसके बाद आपने इतना मतलब पॉजिटिव वे में अपनी पहचान बनाई कि आज के टाइम में आप एक एनजीओ के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ आप उसके बारे में कुछ बताएं।
मैम देखिए, मेरी ना लाइफ का एक विजन है, मैं जितना क्रिकेट को टाइम दे रहा हूँ, मेरे को ना दिन में जब मैं सोता हूँ ना, शाम को रात को सोऊंगा तो मुझे ना एक फील आना चाहिए कि मैंने सोसाइटी के लिए कुछ किया है। तो मेरा जिंदगी का जितना 80-90% अगर मैंने क्रिकेट में मेहनत करके आया हूँ ना, तो 10% मैं लोगों की हेल्प में करूँ। तो मेरा मोटिव होता कि मैं दिन में किसी ना किसी की हेल्प करता रहूँ। तो मैं बेसिकली लोगों के बीच में नई एनिमल्स की हेल्प कर देता था कि शाम को जाके डॉगीज होते, कौ होते, उनको खाना खिला दिया। तो अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड था, वो मुझे बार बार अप्रोच कर रहा था कि तू ये एनजीओ है और ऐसे काम करता है, तो मैं उन्हें बोला कि ठीक है चल मैं। पर जब मैं अभी एक्चुअल में उन बच्चों से मिला है मैम, उनकी आंखों में एक सपने हैं कुछ बनने के। वो बच्चे हैं जैसे किसी स्लम एरिया में झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं, वहां पे उन बच्चों के कईयों के फादर नहीं है, कईयों के मदर्स नहीं है, और कईयों के जो बच्चियां हैं वो मदर्स के साथ में कोठियों में काम कर रही हैं और वो पढ़ना चाहती हैं, पर वही है कि सोर्सेस कम है, उनके पास वो फैसिलिटीज नहीं है, वो सारी सुविधाएं नहीं, वो बनना चाहते हैं।
फाइनेंशियल क्राइसिस।
तो जब मैं अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले उन बच्चों से मिला ना, तो पहले तो मैं सोचा था कि 1-2 महीने में छोड़ के निकल लूंगा, क्या ठीक है यार मैं जैसे करता हूँ वैसे कर। पर जब मैंने उनको देखा तो अब मैंने ये सोच के रखा कि अब पूरा टाइम जो है लाइफ में, जब क्रिकेट खेलना छोड़ूंगा या कुछ भी करूंगा, तो एक समाज को ऊपर लाने के लिए, एजुकेशन को ऊपर लाने के लिए उनके साथ में कुछ जो भी छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन होगा वो करने की कोशिश करूंगा।
कितने बच्चे हैं वहां पे?
मैम देखिए, अभी तो रिसेंटली 70+ बच्चे हैं, जिसमें कि 2 शिफ्ट्स में बच्चे पढ़ते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में बॉयज़ और गर्ल्स आते हैं और शाम की शिफ्ट में गर्ल्स आती हैं। तो उसमें क्या है कि जितने भी बच्चे हैं उनकी हम एजुकेशन करवाने की कर रहे हैं। मैम एक थी जो 1995 से इसको काम कर रही थी, तो उसको कराने की कोशिश बच्चों कर। साथ में मैम मैंने एक ऐड ऑन करा हुआ है जो मैंने अभी उनको देखा कि बच्चों को ना एजुकेशन के साथ में अब किसी को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। प्राइवेट स्कूल में क्या है, करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा है, स्पोर्ट्स भी है, डांस भी है, और आपको डिबेट करना भी सिखाता है, अवेकस भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने अभी उस चीज में लोगों से अपने फ्रेंड सर्कल्स में बात करी है कि हम वो चीज भी इन बच्चों को फैसिलिटी दें। और मैम बच्चे बहुत टैलेंटेड है, मैं आपको बता नहीं सकता कि उन बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस है जो अब मेरे में आया होगा, वो अभी 12-13 साल के बच्चे हैं, 5-7-8 साल के बच्चे हैं, उनमें बहुत कॉन्फिडेंस। और उनकी मदर्स का भी यही था, जब उनसे मैं पहली बार मिला, उनके पेरेंट्स से बात हुई, तो कहते जी